सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे मेरे प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं आप सबसे, जो भारत में मध्यम वर्ग की संख्या में लगातार वृद्धि होती चली जा रही है और उसके क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं, इस विषय पर कुछ बातें करूंगा। लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं। और इनफैक्ट सच बात यह है कि खबरों के नाम पर आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन बात करने के लिए बहुत कुछ है। कल मैंने आपको ध्यान होगा कि एक आर्टिकल प्रोवाइड किया था एक हिंदुस्तान का, मोटे अनाज ही दुनिया को ले जाएंगे बेहतर सेहत की ओर। पता नहीं आपने इसे पढ़ा कि नहीं पढ़ा। मैं माफी चाहूंगा कि मैं इस तरीके से रोज कुछ न कुछ ऐसी बात आप सबसे कर रहा हूं जो आपको बुरी लग सकती है, आपको डिस्टर्ब कर सकती है, हो सकता है। क्योंकि होता, देखिए, सामान्य सी बात यह है कि अगर मैं आपके मन की बातें करता रहूं तो आप मेरी तारीफ करते रहेंगे, मुझसे खुश भी रहेंगे। लेकिन यदि मैं कोई भी ऐसी बात कह दूं जो आपके मन के अनुकूल नहीं है, तो जाहिर है मैं समझता हूं कि मेरे प्रति आपके विचार और आपकी भावनाएं क्या होंगी। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि चूंकि आप जिस रास्ते पर कदम बढ़ा चुके हैं वो चूंकि एक अग्निपथ है, तो मैं आपको सतर्क तो करता चलूं कि इस अग्निपथ पर कैसे आप अपना सफर पूरा कर सकेंगे। बस मैं वही कर रहा हूं। तो दोस्तों, कल एक आर्टिकल मैंने मोटे अनाज से संबंधित दिया था। पता नहीं आपने उसे पढ़ा कि नहीं पढ़ा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ज्यादातर स्टूडेंट ने पढ़ा ही होगा, क्योंकि मोटे अनाज पर लगातार हम लोग बातें कर रहे हैं और अखबारों में भी आपको काफी कुछ पढ़ने को मिल रहा होगा कि कैसे पूरी दुनिया में धीरे 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 मोटे अनाज का महत्व बढ़ता चला जा रहा है। और बकायदे 2023 में तो इसे घोषित भी किया गया है और भारत, आप यूं कह लीजिए कि एक प्रकार से पूरी दुनिया में इसका नेतृत्व कर रहा है, मोटे अनाज का एक तरह से प्रवक्ता बना हुआ है। और यह केवल हमारे सेहत के लिए ही उपयोगी नहीं है, बल्कि दो अन्य दृष्टियों से भी बहुत उपयोगी है, जिसकी हम इससे पहले चर्चा कर चुके हैं। और मुझे लगता है कि सन 2023 का जो मेंस होगा, या कह लीजिए प्री भी होगा, उसमें मोटे अनाज पर जरूर कोई ना कोई प्रश्न होना चाहिए, क्योंकि वो ईयर होगा, मिलेट ईयर होगा 2023। तो मोटे अनाज से जुड़े हुए जो दो और महत्वपूर्ण तथ्य, एक तो सेहत को लेकर के आर्टिकल है ही, दूसरा यह है कि पर्यावरण, कि यह पर्यावरण के काफी कुछ अनुकूल होता है, और तीसरा यह है कि अभी जो पर्यावरण में परिवर्तन हो रहे हैं उनको झेलने की ताकत मोटे अनाज में जितनी है, इनके पौधों में जितनी है, उतनी दूसरों में नहीं है। तो पर्यावरण के लिए सस्टेनेबल भी है ये, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा यूरिया नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा फास्फेट नहीं चाहिए, इसे किसी तरह की पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं होती है, तो पर्यावरण के अनुकूल है। और साथ ही साथ अगर पर्यावरण में परिवर्तन भी हो रहा है, कभी ज्यादा बारिश हो गई, कभी कम बारिश हो गई, इस तरह की भी चीजें अगर हैं, मान लीजिए कि कुछ बीमारियां फैल गई, तो इसका ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं सकती वो बीमारियां, उस रूप में भी ये बहुत उपयोगी है। तो दोस्तों, एक बात जो खासकर इस टॉपिक पर मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि प्लीज इसे आप एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मान करके अपने रजिस्टर या डायरी का एक हिस्सा बना लें, और जब भी इस टॉपिक पर कुछ आपको महत्वपूर्ण बातें जानने को मिलती हैं, आप उन्हें नोट करते जाएं। आज मैं आप सबको टाइम्स ऑफ इंडिया का एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं, लर्न फ्रॉम मोरबी फिक्स लोकल गवर्नमेंट। ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, लर्न फ्रॉम मोरबी। आपको मालूम है कि मोरबी में किस तरीके से एक पुल के टूटने से कितनी बड़ी दुर्घटना घटित हुई, इसके बारे में हम लोगों ने बातें की हैं। अब सवाल यह है कि जो मानव निर्मित इस तरह की जो दुर्घटनाएं होती हैं, निश्चित तौर पर इसके लिए मनुष्य ही जिम्मेदार है, चाहे वो प्राइवेट ठेकेदार हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे लोकल बॉडी हो, चाहे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, कोई ना कोई तो जिम्मेदार है। और सच पूछे तो आज के संदर्भ में अगर हम सोचें तो ये सब मिलकर के जिम्मेदार हैं, क्योंकि कोई भी चीज अकेले नहीं हो रही है। खैर, चलिए, अब उसके लिए अलग अलग एंगल्स हैं, अलग अलग तरीके से आपको आर्टिकल्स पढ़ने को मिलेंगे, लेकिन ये जो आर्टिकल है ये खासकर हमारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के ऊपर है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो नीचे में पंचायत से शुरू होकर के और ऊपर में नगर निगम तक जाती है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये भी आपके सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आप मेंस के क्वेश्चंस उठा करके देखें तो मुझे लगता है कि हर साल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पर एक न एक प्रश्न तो आ ही जाता है, तो आप इसे बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक मान करके चलें। इसमें जिस तरीके से उन्होंने लिखा है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बहुत ही पॉइंट्स दे दे करके अपनी बातें कही हैं, बहुत अच्छे से पॉइंट्स दे दे करके कि क्या प्रॉब्लम है और कैसे उनका निराकरण हो सकता है। दोस्तों जब आप इसे पढ़ेंगे तो बातें क्लियर होंगी, उन्हें दोहराने की मैं जरूरत नहीं समझता, लेकिन एक बात मैं जरूर यहां बताना चाहूंगा कि चूंकि ये इंग्लिश में है और मुझे मालूम है कि इसे अच्छे तरीके से समझ पाना सबके बस की बात नहीं है, तो इसका जो हिंदी वर्जन होगा आपके लिए उपयोगी एडिटेड फॉर्म में, वो हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि इसे एक बार तो पढ़ें, क्योंकि अंततः जनरल इंग्लिश तो आपको क्वालिफाई करना ही है। जब आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो आपको एक बात क्लिक करेगी, और जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हमारी जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, इनके पास जो सबसे बड़ी जो समस्या है, या कह लीजिए कि सबसे बड़ी इनकी जो सीमाएं हैं, या जो सबसे बड़ा जो संकट है, वो धन की कमी है। धन का इनके पास बहुत अभाव है, बहुत अभाव है। ठीक है, इसके लिए अलग अलग तरीके से कोशिश की जा रही है, अब तो म्युनिसिपल बॉन्ड भी जारी किए जा रहे हैं, लेकिन उससे बात बन नहीं रही है। दूसरी जो बड़ी प्रॉब्लम है वो यह है कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है अभी भी ब्यूरोक्रेसी, या यूं कह लीजिए राजनीति के दबाव से मुक्त नहीं है, बहुत ज्यादा कंट्रोल है। जब हम वेस्ट वर्ल्ड में जाते हैं, जब हम यूरोपीय देशों में जाते हैं, तो देखते हैं कि वहां जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, यहां हम सुविधा के लिए म्युनिसिपैलिटी कह लीजिए, उनके पास बहुत अधिकार है। वो किसी भी एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट्स से कम नहीं होते, या पॉलिटिकल पावर वाले से कम नहीं होता, उनके सारे अधिकार उनके पास होते हैं। तो हमारे जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जो लोग हैं, हालांकि वो इलेक्टेड हैं, उनके पास उतने अधिकार नहीं होते, दूसरे उनके पास आर्थिक संसाधन नहीं होते, और नतीजा ये होता है कि वो एक प्रकार से सपोर्ट करने वाली एजेंसी बनकर के रह गई हैं, बजाय इसके कि वो लीड करने वाली एजेंसी का काम करें। तो दोस्तों इसे आप ध्यान से पढ़िएगा। अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और वो है द ग्रोइंग मिडिल। जी हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया में आज इसको लेकर के एडिटोरियल कमेंट है, और ये बहुत ही खूबसूरत एडिटोरियल कमेंट है। ये मैं आपको इंग्लिश में प्रोवाइड कर रहा हूं, और कोशिश होगी कि हिंदी में भी यह आपको मैं उपलब्ध कराऊं। मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग। ये मध्यम वर्ग बेसिकली क्या है, इस पर हम लोग थोड़ी सी बेसिक्स को लेकर के बातें करें। देखिए, जब हम समाज में वर्ग की कल्पना करते हैं, पहली बात आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि वर्ग का संबंध जाति से नहीं है। जाति अलग है और वर्ग अलग है, ठीक है, यहां तक कि वर्ण भी अलग है। जब हम वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं तो उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वाली व्यवस्था आती है। जब हम वर्ग की बात करते हैं तो उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग की बात आती है। और जब हम जाति की बात करते हैं तो वो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते ही हैं कि कितनी सारी जातियां हैं, और जातियों के भी फिर उपजातियां हैं, वो आप जानते हैं। तो ये तीनों बिल्कुल अलग अलग हैं, आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। वर्ण व्यवस्था तो आपके जन्म से निर्धारित हो जाती है, जाति व्यवस्था भी जन्म से निर्धारित हो जाती है, लेकिन वर्ग के साथ ऐसा नहीं है। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्लास। उच्च वर्ग, और इसका जो एकमात्र जो पैमाना है, आप कह लीजिए जो सबसे बड़ा पैमाना है मोटे तौर पर, वह है धन, इनकम। उच्च वर्ग का मतलब है ऐसा वर्ग, समाज का एक ऐसा वर्ग जो आर्थिक रूप से संपन्न है। और देखिए सीधी सी बात है, अगर हम कार्ल मार्क्स की थ्योरी को लेकर के चलें, तो जो आर्थिक रूप से संपन्न है, समृद्ध है, वो सच पूछे तो राजनीतिक शक्ति से भी संपन्न है, सामाजिक हैसियत भी उसकी ज्यादा है, सांस्कृतिक दृष्टि से भी वो उन्नत है, या सभ्यता की दृष्टि से कह लीजिए कि वो उन्नत है, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने यही कहा है कि जिसके हाथ में आर्थिक शक्ति होगी वही नियंता होगा, वही सबको नियंत्रित करेगा। तो यह है उच्च वर्ग, जिसमें आप पूंजीपतियों को ले सकते हैं, धनी वर्ग को ले सकते हैं, बड़े व्यापारियों को ले सकते हैं, बड़े ब्यूरोक्रेट्स को ले सकते हैं, पॉलिटिशियंस को ले सकते हैं, ये उच्च वर्ग में आते हैं। फिर है बिल्कुल निम्न वर्ग। निम्न वर्ग मतलब जो आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर वर्ग है, लेकिन ऐसा नहीं है, अगर मैं निम्न वर्ग कह रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि जिसको एक समय खाने की रोटी भी नहीं मिल रही है, ऐसा नहीं है। वो आर्थिक रूप से एक व्यवस्था की गई है निम्न वर्ग, और इन दोनों के बीच में जो है वो है मध्यम वर्ग। ये जो मध्यम वर्ग है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ग होता है दुनिया के किसी भी देश के लिए। देखिए, उच्च वर्ग अपने में मगन है ना, वो अपने ढंग से चीजों को नियंत्रित कर रहा है। जो निम्न वर्ग है वो पेट भरने के जद्दोजहद में मगन है, उसको दूसरी चीजों के लिए वक्त नहीं है। ये जो मध्यम वर्ग है, इनफैक्ट इसे ही कभी कहीं कहीं व्हील ऑफ कल्चर भी कहा जाता है। जो संस्कृति आपको दिखाई देगी वो इस मध्यम वर्ग में ही दिखाई देगी। व्हील ऑफ कल्चर का मतलब है कि यही वर्ग है जो संस्कृति को, किसी भी समाज की संस्कृति को, राष्ट्र की संस्कृति को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने का काम करती है। और इसमें जो संस्कृतियां हैं, ये जिस संस्कृति को पहुंचाने का काम करती है, वो काफी कुछ परंपराओं से जुड़ी हुई संस्कृति ही होती है। क्योंकि इस मध्यम वर्ग में इतना साहस नहीं होता उच्च वर्ग की तरह कि वो संस्कृति की उपेक्षा कर दे। वो थोड़ा सा डरता है, थोड़ा सा घबराता है अपने समाज से। उच्च वर्ग नहीं घबराता, वो तो अपनी तरफ से रूल्स रेगुलेशंस कह लीजिए कि तोड़ने की हिम्मत रखता है और स्थापित भी करता है, लेकिन मध्यम वर्ग घबराता है। तो देखिए अब प्रक्रिया क्या चलती है कि जो मध्यम वर्ग है वो लगातार कोशिश करता है कि वो किसी तरह से उच्च वर्ग में पहुंच जाए, उच्च वर्ग में पहुंच जाए। और इनफैक्ट ये जो मध्यम वर्ग है कहीं ना कहीं वो उच्च वर्ग की संस्कृति को फॉलो करने की भी कोशिश करता है, उनसे प्रभावित होता है वो। अंग्रेजों के जमाने में अगर हम बात करें तो देखिए कि किस तरह से जो मध्यम वर्ग है वो चाहता था अंग्रेजी बोलना सीख जाए, तो अंग्रेजी बोलना सीख जाए, अंग्रेजी बोलने लगे, अंग्रेजी कपड़े पहनने लगे। ये सब क्या है? उच्च वर्ग की संस्कृति को अपनाने की ही बात है। समाज शास्त्र में इस प्रक्रिया को सांस्कृतिकरण कहते हैं, संस्कृताइजेशन, सांस्कृतिकरण हो जाना, यानी कि जो मध्य वर्ग की अपनी जो संस्कृति है उस संस्कृति का बदल जाना, यानी कि मध्य वर्ग की जो अपनी संस्कृति है उस संस्कृति में बदलाव आना। और ये जो बदलाव है ये निम्न वर्ग की संस्कृति के अनुकूल नहीं है बल्कि उच्च वर्ग की संस्कृति के अनुकूल है। तो यह है मध्यम वर्ग। और जो मध्यम वर्ग होता है, सच पूछिए तो जो एक्टिविज्म आप देखेंगे, जो आंदोलन आप देखेंगे, इस तरह की जो बातें समाज में दिखाई देंगी वो ज्यादातर मध्यम वर्ग की ही होंगी। अगर आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जरा भी जज करने की कोशिश करेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो पाएंगे कि अगर बहुत ही कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर जो हमारे लीडर रहे हैं फ्रीडम मूवमेंट के, वो मध्यम वर्ग के ही रहे हैं। इसीलिए किसी भी राष्ट्र के लिए जो मध्यम वर्ग है बहुत ज्यादा मायने रखता है। दोस्तों, मैंने केवल मध्यम वर्ग के बारे में आपको जानकारियां दी हैं, एडिटोरियल कमेंट को इसमें मैंने शामिल नहीं किया है। इस पृष्ठभूमि में जो बातें मैंने आप सबसे अभी की हैं, जब आप इस एडिटोरियल कमेंट को पढ़ेंगे तो इसे समझने में आपको आसानी होगी। ध्यान से पढ़िए, बहुत कठिन नहीं है, इतनी अंग्रेजी आपको सीखनी भी होगी। अदरवाइज मेरी कोशिश होगी कि इसका जो हिंदी तर्जुमा है एडिटेड फॉर्म में आपको उपलब्ध कराऊं। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूं और इन्हीं में से एक मित्र का नाम है आदित्य सोनी, जो रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं। आपका बहुत बहुत आभार। और फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।